Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
To prasang ye challa hai, Upanishad Vidya क्या करती है तो कहने लगे हमें वह ज्ञान कराती है जिस ज्ञान के द्वारा सर्वथा समस्त दुखों की निवृत्ति हो करके और हमें उस अद्वयानंद की प्राप्ति होती जिसे मोक्ष शब्द से कहा तो उसको कराने वाली उपनिषद विद्या। अब इसको विद्या शब्द से उपनिषद को कह करके संकेत किया कि फिर ये संसार की जो विद्या है वो क्या है तो कहने लगे ये सब अविद्या है। अब विचार करके देखा जाए तो संसार के अंतर्गत ही प्राणी मात्र का वर्तना है। प्राणी मात्र की स्थिति है तो कहां है का संसार के अंतर्गत हो और संसार के अंतर्गत रहते हुए ही उसके समस्त व्यवहार जो हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं संसार में हो रहे और कहने लगे इस विद्या को प्राप्त कर लेंगे तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी ठीक है और संसार भी क्या है तो कहा अविद्याकृत है तो फिर संसार की निवृत्ति हो जाएगी और संसार की यदि निवृत्ति हो जाएगी तो फिर मैं कहां रहा क्योंकि संसार में ही वो संसार से भिन्न तो हमारी स्थिति है नहीं क्योंकि जितने भी विषय हैं और विषयों का उपसेवन करने वाला जो भी करता है वो कहां है संसार के अंतर और संसार का भी स्वरूप हमने कितना समझा कहा पंचभूतात्मक ही हमारा शरीर भी है जिसको लेकर के हम अपने को हम समझते हैं और जितने भी पदार्थ और जितने विषय हैं वो भी कैसे हैं पंचभूतात्मक तो सारे विषय भी पंचभूतात्मक और सारे प्राणी भी पंचभूतात्मक। अब यदि इनको हमने अविद्या कह दिया और इनकी निवृत्ति कर दी तो फिर क्या बचा तो क्या कहो और ये कहते हैं कि भाई ऐसी विद्या को प्राप्त करने से लाभ क्या कि जिस विद्या के प्राप्त होने से संसार न रह जाए व्यवहार न रह जाए तो इसके लिए ही संकेत ये किया यदि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और एकांतिक आत्यंतिक यदि सुख चाहते हो तब तो इस विद्या में प्रवेश करने की आवश्यकता है और इस विद्या में प्रवेश करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इसलिए इस उपनिषद विद्या को यहां पर संकेत किया गया। अब थोड़ा सा विचार करें कि संसार अविद्याकृत और जो है विद्या है वो क्या है तो कहा वहां तो ये कुछ रहता ही नहीं जिसे उपनिषद विद्या कहते क्योंकि इन सब की निवृत्ति हो जाती है। वेदांत के अंतर्गत आप शब्द सुनते हो जब निर्वचन इनका किया जाता है तो एक को अधिष्ठान कहा जाता है और दूसरा अध्यस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब विचार करके देखो कि अधिष्ठान किसे कहते हैं अधिष्ठान क्या है तो अधिष्ठान शब्द में स्था धातु और अधि उपसर्ग को लेकर के अधिष्ठान शब्द बनता है। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है अधिकरण। अधिकरण क्या है तो अधिकरण को बतलाते हुए संकेत किया गया आधारो अधिकरणम, आधार का नाम ही अधिकरण है। और जहां पर कहा गया अध्यस्त, तो अध्यस्त शब्द का अर्थ क्या है, तो अधिकरण में जिसकी कल्पना, या यूं कहें विपरीत ज्ञान ही अध्यास है और उस अध्यास से होने वाला ही अध्यस्त है। तो जो विपरीत ज्ञान है या जिसमें विपरीत बुद्धि है वो ही अध्यस्त पदार्थ है। क्या तात्पर्य हुआ इनका, ये सुनते रहते हो वेदांत का श्रवण करते समय अधिष्ठान अध्यस्त, तो अधिष्ठान का अर्थ हुआ आधार अधिकरण। आधार का मतलब जैसे पृथ्वी को हमने ग्रहण किया, तो पृथ्वी क्या है, सारे के सारे हमारे व्यवहार और हमारी आधार पृथ्वी है। पृथ्वी आधार है तो पृथ्वी को हमने अधिकरण कह दिया, और पृथ्वी अधिकरण हो गई, आधार हो गई, या सबका आश्रय हो गई। किसका सबका, तो जो भी करता है उसका, और कर्ता का जो भोग्य पदार्थ है उसका भी आधार कौन है, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है भोग्य पदार्थों का और कर्ता का भोक्ता का सबका आधार है। पृथ्वी के बगैर न कोई कर्ता है, न कोई भोक्ता है, और न कोई भोग्य पदार्थ है। जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो सब कहां उपलब्ध होते, कहा पृथ्वी पर, और उनका भोग कहां होता, कहा पृथ्वी पर, और भोक्ता कौन है, तो कहा जीव वो कहां है, कहा वो भी पृथ्वी पर। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, कर्ता भोक्ता भोग्य पदार्थ ये सब का आधार कौन है, कहा पृथ्वी। अब जो सबका आधार है इसलिए पृथ्वी को कह दिया अधिष्ठान, और कर्ता भोक्ता और भोग्य पदार्थ ये क्या हो गए, ये हो गए अध्यस्त। अब अध्यस्त का जो अर्थ किया गया है वो क्या है, जो अध्यास है उसमें दृढ़ता का नाम ही है अध्यस्त, या अध्यास से होने वाले पदार्थ का नाम ही है अध्यस्त। और अध्यास क्या है, तो अध्यास को सुनते हो अतस्मिन तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है और उसे वैसा समझ लेना, इसका नाम क्या है अध्यास, या यूं कह दें विपरीत बुद्धि का नाम है अध्यास। अब आप विचार करो, बोलते हो सुराही, बोलते हो घट। अब घट जो है वो क्या है, तो कहने लगे अध्यस्त है। कहां अध्यस्त है, कहां पृथ्वी पर। तो घट के अंतर्गत क्या धर्म है, कहा घटत्व धर्म है। और पृथ्वी के अंदर क्या धर्म है, तो गंधत्व है, काठिन्यत्व है, ये धर्म किसके हैं, पृथ्वी के। अब विचार करो कि उस घट में काठिन्यत्व है, उस सुराई के अंदर काठिन्यत्व धर्म है, उसके अंदर गंधत्व धर्म है, तो क्या कहोगे, कहा है, क्योंकि जहां भी पृथ्वी रहेगी वहां पर क्या रहेगा, गंध रहेगी, काठिन्यता रहेगी, और जहां गंध रहेगी काठिन्यता रहेगी वहां पृथ्वी रहेगी। तो घट के अंदर काठिन्यत्व भी विद्यमान है और गंधत्व भी विद्यमान है। और ये धर्म है किसके? कहा पृथ्वी के। तो घट को पृथ्वी क्यों नहीं कहते? वो धर्म मिल रहे, लेकिन कहने लगे वो तो घट है। तो घट क्यों है? क्योंकि उसमें एक आकार और एक नाम कल्पित कर लिया गया। कल्पित क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि जब ये घट नहीं था तब उसका नाम भी हमने नहीं रखा था और जो है उसका आकार भी नहीं था। अब ये जो आकार आया है और नाम आया है, उस नाम और आकार का आधार क्या है? मिट्टी भी है और मिट्टी के साथ एक चीज और है, वो क्या है? मिट्टी के साथ में एक चीज और है, वो है मिट्टी के काठिन्यत्व और मिट्टी के गंधत्व से दृष्टि का हट जाना। और उससे दृष्टि हट करके जो हमने कल्पना की है उसके नाम में और आकार में दृष्टि का स्थित हो जाना। यही क्या हो गया? यही अध्यस्त पदार्थ है। तो अब जो पृथ्वी जो है वास्तव में यथार्थ रूप में या सर्वथा रहने में पृथ्वी की सत्ता है, काठिन्यत्व की सत्ता है, गंधत्व की सत्ता है और नाम रूप की सत्ता तो उसमें कल्पित की गई है या रखी गई है और उसका नाश भी हृदसराई को तोड़ दिया गया, घट को तोड़ दिया गया तो क्या होगा? तो नाम गया उसका, आकार गया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? नाम भी आया हुआ है, आकार भी आया हुआ है। और जो आता है वो चला भी जाता है। लेकिन पृथ्वी जो है वो न आई है और न गई है। मैंने अभी मूल रूप से समझो, जब वहां पर समझोगे तब तो बात अलग। तो इसलिए पृथ्वी हो गई क्या? अधिष्ठान। माने अधिष्ठान का मतलब एक और लेना, अधिकरण रूप से जो सदा स्थित है, आधार रूप से जो सर्वथा स्थित है, उसका नाम ही होता है अधिष्ठान। तो अब जो है पृथ्वी क्या है? तो घट आदि की अपेक्षा सर्वथा स्थित है। कितने पदार्थ आते हैं चले जाते हैं लेकिन पृथ्वी जैसे की तैसी है। तो अब पृथ्वी सदा रहने वाली है, अधिष्ठान रूप है और उस पर होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं? कहा अध्यस्त हैं, आने वाले हैं और जाने वाले। ये संकेत किया। तो इतना यहां पर हमारी समझ में आ गया कि पृथ्वी अधिष्ठान है और सारे पदार्थ उसमें अध्यस्त हैं। दूसरी तरफ जब कहते हैं कि ब्रह्म अधिष्ठान है, क्या कहते हैं? और संसार अध्यस्त है, क्या कहते हो? ब्रह्म अधिष्ठान है और संसार अध्यस्त। तो इतने से इतना तो समझ में आ जाता है कि ब्रह्म ही सबका आधार है, आश्रय है। ब्रह्म ही क्या है? क्योंकि अधिष्ठान जो होता है वो सबका आसार आश्रय आधार होता है। तो ब्रह्म ही सबका आश्रय है, सबका आधार है। अब जो ब्रह्म आश्रय है, आधार है, वो कैसा है? सदा रहने वाला है। अब ब्रह्म के अंदर धर्म क्या है? तो अनुभव नहीं कर सको लेकिन सुनते तो हो, श्रवण के द्वारा तो उसका ज्ञान होता है। क्या है ब्रह्म के अंदर? यद्यपि उसका स्वरूप है, स्वरूप को ही धर्म शब्द से कह दिया, लेकिन धर्म उसमें कोई रहते नहीं, वो बाद की बात, पहले हम धर्म रूप से ही समझें। तो ब्रह्म में सत्यत्व है, चैतन्यत्व है और ब्रह्म में आनंदत्व है। जैसे पृथ्वी में गंधत्व, काठिन्यत्व आदि है, वैसे ही ब्रह्म में क्या है? सत्यत्व, चैतन्यत्व और आनंदत्व। तो जहां पर सत्यत्व, आनंदत्व, चैतन्यत्व आदि से युक्त या आदि के स्वरूप वाला जो है वो है अधिष्ठान, वो है आधार, और उसी अधिष्ठान में, उसी आधार में अध्यस्त है संसार। और संसार में क्या धर्म रहता? हाँ, संसार में तो जो जिसके अंदर संसरण है उसको हम संसार कहते, माने जो आए और चला जाए, आने वाला और जाने वाला, वो क्या है? संसार। तो आने जाने वाला जो है वो संसार है, और जो आने जाने वाला होता है वो नित्य, और आधार को तो सत्यत्व से ही कह दिया उसकी नित्यता। तो अब यहां पर हमने देखा संसार जो है वो क्या है, तो संसार को लेकर के हम कहते हैं जिसमें ईश्वर है, जिसमें जीव है, जिसमें जगत है। अब जो है ईश्वर भी जगत से भिन्न नहीं है, जीव भी जगत से भिन्न नहीं है, ये सब कहां है? जब तक संसार है तब तक ईश्वर है, जब तक संसार है तब तक जीव है। अब जो ईश्वर, जीव और जगत, ये तीनों कहां हैं? कहा ये हैं संसार में, ध्यान देना। ईश्वर किसे कहते हैं? तब क्या कहोगे, ईश्वर कौन है? तो कहने लगे कि जिसके अंदर ईशनत्व धर्म विद्यमान है। क्या कहोगे? ईशनत्व शासकत्व धर्म विद्यमान है, वो है ईश्वर। जीव कौन है? तो कहने लगे जिसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व धर्म विद्यमान है, वो है जीव। और फिर जगत किसे कहोगे? तो कहने लगे जायते, लियते है, वो कौन है? जगत, जो उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है वो जगत है। तो अब यहां पर शासकत्व जिसके अंतर्गत, ईशनत्व जिसके अंतर्गत विद्यमान है उसे ईश्वर कहा, कर्तृत्व भोक्तृत्व जिसके अंतर्गत विद्यमान है वो जीव शब्द से कहा, और जो उत्पन्न होवे और नष्ट हो जावे उसे क्या कहा? जगत कहा। तो अब विचार करो कि ईशन करना, शासन करना, शासकत्व जिसके अंतर्गत है तो वो भी क्या है? वो भी किसी अधिष्ठान में है। शासकत्व कब आया उसमें? ईशनत्व उसमें कब आया? भाई जीव है, जगत है, तभी तो वो शासक बनेगा। जब जीव नाम की कोई चीज नहीं है, जगत नाम की कोई चीज नहीं है, तो ईशन किसका करेगा, शासन किसका करेगा? प्रजा है तभी तो राजा होगा, और प्रजा नहीं है तो राजा नहीं होगा। भाई श्रोता है तभी वक्ता कहलाएगा, और कोई श्रोता न हो तो बोलते रहो, लोग कहेंगे है पागल हो गया। ये तो है ना। तो इनका परस्पर संबंध वैसे ही शासकत्व और जो शासित हो इनका परस्पर संबंध है। तो जीव जगत का शासन करने वाला जो ईश्वर, तो वो कब हुआ ईश्वर, कब कहलाया ईश्वर, जब उसने जीव और जगत का शासन किया। अब जीव जगत के शासकत्व को लेके उसे ईश्वर कहा, तो जीव और जगत भी कैसे हुआ, कब हुआ, तो आप घट की तरह से समझ लो। उसमें भी एक आकार आया, उसमें भी एक नाम आया, और आकार और नाम को लेकर के उसमें कर्तृत्वादि धर्म आए। आकार और नाम को लेकर के कर्तृत्वादि धर्म आए। अब विचार करो कि ये जो सबका सब है तो इनका आधार क्या है, कहां हुआ ये सब, किसमें हुआ, तो कहोगे तब उसको कह दिया जाता वो है ब्रह्म। क्या कहते हो, जैसे घटादि को लेकर सुराई आदि को लेकर पृथ्वी को आधार रूप से ग्रहण कर लेते हो, वैसे ही आप ग्रहण नहीं कर पाए लेकिन यहां शास्त्र के युक्ति के द्वारा वैसे ही यहां पर बतलाया जाता है कि उसका आश्रय उसका आधार क्या है, का जो आधार है जो आश्रय है वही है ब्रह्म। तो जो आधार बनता है आश्रय बनता है उसी को अधिष्ठान कहते, तो इसलिए ब्रह्म को कह दिया गया अधिष्ठान। पृथ्वी पर सारे पदार्थ हैं तभी उसे आधार अधिष्ठान कहोगे, और ये पदार्थ न हो केवल पृथ्वी हो तो क्या कहोगे, तब वहां अधिष्ठान शब्द का प्रयोग। तो अधिष्ठान शब्द भी यद्यपि सापेक्ष है, अध्यस्त की अपेक्षा से अधिष्ठान है, अधिष्ठान की अपेक्षा से अध्यस्त है। तो ये समझने के लिए, अब जहां पर अध्यस्त न रह जाए तो वो किसी का अधिष्ठान भी नहीं होता। अधिष्ठान और अध्यस्त का जहां पर भाव है वहीं पर ईश जीव जगत आदि है, और जहां पर पृथ्वी का अधिष्ठान रूप से ग्रहण होता है वहीं पर समस्त पदार्थों का भी ग्रहण होता है। जहां पृथ्वी को अधिष्ठान रूप से ग्रहण नहीं करोगे वहां सारे पदार्थों का भी ग्रहण नहीं। तो अब जितने भी पदार्थ हैं तो ईश भी हमने कह दिया अध्यस्त है, और जीव भी अध्यस्त है, और कहने लगे जगत भी अध्यस्त है, और फिर उस अध्यस्त में उनके अपने अपने धर्म है। तो अधिष्ठान जो है वो इन सब धर्मों का आधार होते हुए उसमें क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या क्रिया है, तो क्या कहोगे, तो कहोगे उसमें तो कोई क्रिया नहीं। वही पृथ्वी पर घट उत्पन्न हुआ, घट टूट गया, सुराही आदि उत्पन्न हुए, वनस्पति उत्पन्न हुई समाप्त हो गई, और सारे के सारे पदार्थ उत्पन्न और समाप्त होते हैं, लेकिन उससे पृथ्वी का क्या बनता और क्या, पृथ्वी तो पृथ्वी ही रहती है, पृथ्वी का कुछ बनता भी नहीं और कुछ बिगड़ता भी नहीं। तो ये जैसे सारे विकार पृथ्वी में है वैसे ही सारे विकारों की कल्पना, पृथ्वी में तो फिर भी विकार दिखाई देता लेकिन वैसे ही सारे विकारों की कल्पना जिस आश्रय में है उस आश्रय का उस आधार का नाम अधिष्ठान करके कह दिया, और वो अधिष्ठान क्या है तो उसे ब्रह्म कह दिया। और ब्रह्म कैसा है तो कहने लगे सत है, चित है और आनंद। अब जो सत चित आनंद रूप है और उसी के आश्रय में ये सब कुछ रहने वाला। तो जब उसी के आश्रय में रहने वाला है तो फिर विचार ये करना है, तो जैसे ब्रह्म में धर्म है वैसे धर्म इनमें भी हैं। जैसे पृथ्वी के धर्म है, वो धर्म घट में है कि नहीं? भाई घटत्व तो अलग है, लेकिन काठिन्यत्व और गंधत्व धर्म जो है पृथ्वी से होने वाले सारे पदार्थों में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। ऐसे ही यह सारे धर्म जो भी यह कल्पित है उसमें है या नहीं, तो एक दृष्टि से तो यह भी कहा जाएगा कि हैं, और एक दृष्टि से यह भी कहा जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहां व्यावहारिक सत्ता पृथ्वी की है, इसलिए पृथ्वी की व्यावहारिक सत्ता को लेकर के पदार्थों की सत्ता दिखलाई दे रही है, तो वहां तो हमें जो है अनुभव हो जाता है, लेकिन जो है उस ब्रह्म की व्यावहारिक सत्ता नहीं है। ब्रह्म की सत्ता कैसी है? तो कहने लगे पारमार्थिक। और जो है व्यवहारिक सत्ता उसमें कल्पित है, अध्यस्त है। तो अब जो अध्यस्त पना भी है वो उसमें कैसे, और ब्रह्म भी अधिष्ठान कैसे, ये भी समझना। तो कहने लगे अध्यास वही होता है जहां विपरीत बुद्धि होती है, और विपरीत बुद्धि कब होती है, विपरीत बुद्धि का होना कैसे होता है? तो क्या कहोगे? अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर। जब तक अविद्या नहीं होती है, जब तक अज्ञान नहीं होता है, तब तक विपरीत बुद्धि नहीं होती। तो विपरीत बुद्धि का होना ही अज्ञान से सिद्ध है, अविद्या से सिद्ध है। और जहां अविद्या आती है तो विपरीत बुद्धि होती है, और जहां विपरीत बुद्धि होती है वहीं पर क्या होता? तो कहने लगे उसी अविद्या को लेकर के विपरीत हो गई बुद्धि क्या? अहम। विपरीत बुद्धि क्या हुई? अहम। और अहम जब विपरीत बुद्धि हुई तो अहम में विपरीत बुद्धि होते हुए फिर उस विपरीत बुद्धि का सिलसिला चला। इसलिए स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, अन्योन्याध्यास ये बोलते हो, है ना? अब जैसे ही यह अहम हुआ तो अहम भी अध्यास हुआ एक, और अहम अध्यास में ही फिर उस विपरीत बुद्धि का सिलसिला आगे चला तो हो गया मम। क्या हो गया? मम माने मेरा। और जैसे ही मम हुआ तो कहने लगे फिर कामना हो गई, और कामना हो गई, इच्छा हो गई, और जैसे ही इच्छा हुई तो कहने लगे राग और द्वेष हो गया, और जैसे ही राग द्वेष हुआ तो वैसे ही अयोग्य संबंध आदि होने लगे। अब जैसे ये हुए तो जहां पर अयोग्य संबंध होंगे वहां क्या होगा? का दुख होगा। जहां जिसकी योग्यता नहीं है और वहां पर उसको बैठा दिया जाए तो क्या होगा? कहा उससे अनर्थ ही होगा, उससे दुख ही होगा। यह योग्य संबंध होगा। अब ये सब सिलसिला चलता है और इसी का नाम है संसार। तो अधिष्ठान का जब तक हमें बोध नहीं होता, ऐसा नहीं कि अधिष्ठान हमसे कहीं दूर चला गया, अधिष्ठान में ही सारा अभ्यास हुआ, लेकिन अभ्यास किसको लेकर के हुआ? तो इसे हमने कह दिया अज्ञान, कह दिया अविद्या, कह दिया माया, कह दिया भूल, कह दिया भ्रम, कह दिया। ये सब एक पर्याय शब्द माने भूल से हुआ, भ्रम से हुआ, विस्मृति से हुआ। तो अब विस्मृति किसकी? तो अधिष्ठान की, लेकिन सर्वथा विस्मृति नहीं। कहां पर विस्मृति हुई? कहा किसी अंश विशेष में विस्मृति हो गई, और जैसे ही विस्मृति हो गई तो इसी का नाम हो गया अविद्या, माया, अज्ञान।